को माफ करने के। उसने उस मुश्किल से उसको निकाल दिया, और जैसे ही मुश्किल से निकाला ये इंसान फिर अल्लाह से गाफिल हो गया। तो अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों की कदर करने वाला बनाए। हर नेमत का मतलब है जिम्मेदारी। इसलिए नेमत नहीं मिली हमें कि हम हैं ही इतने अच्छे। क्या हमारे पास चॉइस थी कि हम ऐसे घरों में और ऐसे सरकमस्टांसिस में रहते हैं, और वो जो इस वक्त बाहर सड़क पर खड़े होकर 34 डिग्री 33 डिग्री के अंदर भीख मांगते हैं, वो जिनके सर पर छत नहीं है, वो जो फुटपाथ पर सोते हैं, कभी सोचा है? कभी हमने इमेजिन कि हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हमें एक रात फुटपाथ पर गुजारनी पड़े। लोग अपनी जिंदगियां उसमें गुजार रहे हैं, बच्चे जवान हो रहे हैं सड़कों के ऊपर। हमारे पास क्या क्रेडिट है ऐसा कि हम ऐसे घरों में और वो सड़कों पर? क्या हमें ऐसे पर लगे हुए हैं? कौन से हम आसमान से उतरे? जैसे वो अशरफुल मखलूक वैसे ही हम मखलूक, जैसे उनके दो हाथ पांव वैसे हमारे दो हाथ पांव, जैसे वो अल्लाह के बंदे वैसे हम अल्लाह के बंदे। तो फिर अल्लाह ने हमें इतनी नेमतों में क्यों रखा है? इसलिए कि हम हैं ही इतने अच्छे, इसलिए कि अल्लाह ने हमसे कोई काम लेना है। उनका इम्तिहान गुर्बत का इम्तिहान, उनका भी इम्तिहान है और हमारा भी इम्तिहान है। हमारा इम्तिहान माल का इम्तिहान। कौन सा इम्तिहान ज़्यादा सख्त है? हम कहते हैं गुर्बत का इम्तिहान। नहीं, गुर्बत तो खालिक से जोड़ देती है, गुर्बत तो दिल को नरम कर देती है। वो सड़क पर फिरने वाली औरत, वो सड़क पर फिरने वाले बच्चे, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है। और हमारे बच्चे एसी से निकलकर एसी में बैठते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल्स में पढ़ते हैं। हर दुनिया की नेमत मौजूद है और माथे के बल ख़त्म नहीं होते, मुस्कुराहट चेहरे पर आती नहीं है। घर आते हैं लगते हैं मुस्कुराहट किसी बैग में डाल के लॉकर में डाल के बंद कर देते हैं। इसका मतलब है हमारे बच्चों में किबर आ रहा है और इस किबर का इलाज करने की ज़रूरत है। डिलेड ग्रैटिफिकेशन अपने बच्चों को सिखाएं। जितनी माएँ बैठी हैं अपने बच्चे की हर ख्वाहिश प्लेट में रख के उनके मांगने से पहले मत पूरा कर दें, ये उनको मुतकब्बिर बना रहा है। वो समझते हैं हमारा हक है। जबी तो आप देखें जब माँ बाप औलाद को समझाते हैं बेटा ऑलरेडी बहुत हो गया तुम पर खर्चा, बस अब ब्रेक्स लगाओ, तो बच्चे क्या कहते हैं? तो आपने कौन सा खास काम किया? आपका राइट है आप करें। ये मुतकब्बिर मिजाज है। जब नेमत को अपना हक समझा जाए, हमारा हक है कि हम इस तरह के घरों में रहें और स्कूल कॉलेजेस में पढ़ें, और सड़क पे फिरने वाले वो बच्चे जिनकी डेस्परेशन ये है कि वो स्कूल्स में जाना चाहते हैं लेकिन माँ बाप के पास रिसोर्सेज नहीं है। हमें अपना इम्तिहान इम्तिहान समझना है। हमने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। इलीट समझ के अपने आप को, कुरैश की तरह अपने आप को जहन्नुम का मज़ीद एलिजिबल नहीं बनाना। तो कुरैश का क्या कहना था या कुरैश का क्या अंदाज़ था? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दावत देते थे हर बात को झुटला देते थे, सुनने को तैयार ही नहीं होते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को आता देखते थे तो वहीं से शुरू कर दिया करते थे प्लानिंग। लोगों को कह दिया करते थे कान बंद करके गुजर जाओ, इनकी बात ना सुनना। उसी पिक्चर को यहाँ डिपिक्ट किया गया है। फकज़्ज़बना वकुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, एडमिट करेंगे हमने झुटलाया और हम हर बात पे कहते थे हाँ हाँ अल्लाह ने कोई बात नाजिल नहीं की। दुनिया में दूर भागते थे दीन की डिस्कशन से। आज वो तमाम माइंडसेट जो बड़े आराम से ये कहता है कि हम हर चीज़ पर बात करेंगे रिलीजन को डिस्कस नहीं करेंगे, हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे हम दीन की बात नहीं करेंगे, वो सब माइंडसेट ये बात समझ जाए कि वो असल में अपने आप को दीन से दूर करके अल्लाह की रहमत से दूर कर रहे हैं। ये दीन है, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये मेरी चॉइसेस का हिस्सा है, ये मेरे उठने बैठने का हिस्सा है। इसको जानेंगे तो अपनी आखिरत को संवार सकेंगे और दुनिया की क्वालिटी को मेंटेन कर सकेंगे। आगे फरमाया इन अंतुम इल्ला फी दलाल इन कबीर, तो तुम लोग तो ह्यूज मैसिव कन्फ्यूजन में हो। इससे यहाँ पर इन अंतुम जो आया है इस अंतुम से ही स्कॉलर्स ने इस आयत में कहा है कि नज़ीर सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे, वरना आता इन अंता इल्ला फी दलाल इन कबीर। अंतुम प्लोरल आया है, जमा आया है, जो ये बता रहा है कि और डराने वाले भी थे और नसीहत करने वाले भी थे और समझाने वाले भी थे। इन अंतुम इल्ला फी दलालिन कबीर के स्कॉलर्स ने दो मफहूम किए हैं। एक मफहूम यह है कि ये अहले जहन्नुम ही का कॉन्वर्सेशन का अगला जुमला है कि हाँ जब भी कोई नज़ीर आता था हम हर एक को यही कहते थे कि तुम खुद गुमराह हो, तुम मैसिव कन्फ्यूजन का शिकार हो। तो एक राय यह है मुफस्सिरून की कि यह अहले जहन्नम ही कह रहे हैं, फकद्दबना से आगे उन्हीं का जुमला कंटिन्यू हो रहा है। एक मुफस्सिरून की राय यह है कि इन अंतुम इल्ला फी दलालिन कबीर, ये फरिश्तों का कोट है कि जब वो अपनी बात कह देंगे कि हमारे पास तो नज़ीर आया था, उसने बड़ी मेहनत से नसीहत की, हम ही ने झुटला दिया, तो फरिश्ते कहेंगे यकीनन तुम सब मैसिवली कन्फ्यूज थे, तो तुम लोगों ने अपना ही नुकसान किया है। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर समझता है। आगे फरमाया आयत नंबर 10 में, वक़ालू, और वो कहेंगे, अब ये कौन कहेंगे? जहन्नुम में जाने वाले। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मऊ औ नाक़िलू मा कुन्ना फ़ी असहाबिस सईर, काश के हम सुनते और हम अक़ल से काम लेते तो हम असहाब सईर में से ना होते। यानी दो चीज़ें उन्होंने अपनी गलती मेंशन की ताकि आज सूरह मुल्क पढ़ने वाला अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी में अपने अंदर से इस गलती को इरेडिकेट करे, अगर उसके अंदर है। उन्होंने कहा काश हम सुनते और हम अक़ल से काम लेते। ये जो लव आया है अरबी ज़ुबान में, इसको कलीमतुल हसर कहा जाता है। कलीमतुल हसर ये होता है कि ऐसे मौके पर यह लव आता है जिसके बाद करेक्शन की कोई गुंजाइश ना रहे। नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग फर्दर फॉर अ बेटर पॉइंट ऑफ व्यू। लव, इसलिए अंग्रेज़ी में, उर्दू में आप कहते हैं काश, एक वक्त गुजर गया, अब ये बेहतर नहीं हो सकता। तो जहन्नमी इस वक्त अपने रिग्रेट को, अपने हसर को मेंशन करेंगे कि अब काश हमने ये दो काम किए होते। यानी इससे क्या पता चल रहा है, वेरी प्रैक्टिकल थिंग, सुनना इंसान के अंदर एक प्रोसेस को स्टार्ट करता है। आप जो सुनते हैं, जस्ट ऐड द वर्ड, आप जो सुनते हैं वो आपको एक थिंकिंग पैटर्न देता है। आपके कानों से जो कुछ आपके दिमाग तक जाएगा वो आपको एक थिंकिंग प्रोसेस देगा। इन्होंने क्या कहा है, हम सुनने को तैयार नहीं थे, काश हम सुनते और अक़ल से काम लेते। लव कुन्ना नस्मऊ औ नाक़िलू। मुफस्सरीन कहते हैं इस आयत में एक ह्यूज वार्निंग है और एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वार्निंग और ब्लेसिंग किस तरह से? वार्निंग ऐसे है कि जिसने अब तक तौबा नहीं की और वो कुरान सुनता नहीं है, वो कुरान सुनना शुरू कर दे। जो अब तक बग़ैर सोचे समझे चीज़ों को सुनता है, अब वो सोच समझ कर चीज़ों को सुने, ये वार्निंग है। ब्लेसिंग कैसे है? सब उन लोगों के लिए ब्लेसिंग है जो इस बात पर परेशान होते हैं कि हम अपनी औलाद को दीन की तरफ कैसे लेकर आएं। सब वो लोग जो आज दीन से दूर भाग रहे हैं, सब वो यूथ जिसके लिए दीन सबसे लास्ट लिस्ट में एक ऑप्शन है, सब वो बच्चे जिनके लिए उनके स्कूल और उनकी यूनिवर्सिटीज़ और उनके प्रोफेशंस और उनके दोस्त और उनकी चॉइसेस और उनकी टेम्पटेशंस प्रायोरिटी पर हैं, रिलीजन की बात में फ़र्ज़ पूरा कर तो रहे हैं, क्यों पीछे पड़ जाते हैं? हम नमाज़ पढ़ तो लेते हैं, जब आप सिर्फ फ़र्ज़ पर स्टिक करते हैं तो ये मैं आपको बता दूँ, आप वहाँ पर जमे नहीं रहते, आपको ब्रेक्स लगती नहीं उस जगह पर। सिरात मुस्तकीम वो रास्ता है जिस पर हमने कई मर्तबा बात की है, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ रास्ता जो वर्टिकल ऊपर जा रहा है। सूरह फातिहा आप में से जिन लोगों ने मेरे साथ की थी, हमने बहुत तफसील से इस पर बात की थी। सिरात मुस्तकीम वो रास्ता है जो वर्टिकल पोजिशन पर जा रहा है। अगर आप इसमें रुकेंगे तो आप इस जगह, एक जगह पर स्टेगनेंट नहीं रहते, या तो आप गिरते हैं या आपको आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगती है और आप पीछे आना शुरू हो जाते हैं। तो जो बच्चे ये कहते हैं हाँ तो हम फ़र्ज पढ़ तो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनके 5 वक्त की नमाज़ें सिर्फ जुम्मे पर आ जाते हैं, फिर जुम्मे की नमाज़ें ईद पर आ जाते हैं, फिर ईद की नमाज़ भी कभी होती है और कभी नहीं होती। इस तरह के तमाम बच्चे, इस तरह के तमाम मुसलमान जिनके लिए दीन का नाम सुनना नाकाबिले बर्दाश्त है, ऐसे लोगों के लिए हमारे पास एक खुशखबरी है इस आयत में। वो ये है कि अगर आप उनको सुनाना शुरू कर दें, और सुनाना मतलब खरी खरी नहीं, अगर आप उनको कुरान सुनाना शुरू कर दें, तो एक इसके अंदर बेहतर पहलू, पॉजिटिव पहलू ये है कि वो उस डायरेक्शन पर सोचना शुरू कर सकते हैं। हाँ, सुनाना कैसे है, दिस विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। माँ होते हुए हो सकता है आपकी बात उनको समझ आती हो तो फिर आप बात करेंगे, आपकी नहीं समझ आती तो आप किसी क्लास में भेजेंगे, क्लास में नहीं जाते तो आप किसी की बात सुना देंगे। 1 घंटे का लेक्चर नहीं सुन सकते हैं दो मिनट की बात सुना देंगे, बट यू हैव टू ट्राई कि आपके बच्चे सुने, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो शौहर हों, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो। हर नाफरमान इंसान इस दुनिया में अल्लाह के रास्ते की तरफ पलट सकता है अगर वो अल्लाह के कलाम को सुनना शुरू कर दे। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। जो कानों की खिड़की से दिमाग तक जाता है वो इंसान की अक़ल को ट्रिगर करता है। जब सुनने का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, याद रखें, जब दीन सुनने के दरवाज़े बंद हो जाते हैं तो दीन के रास्ते पर सोचने के दरवाज़े भी बंद हो जाते हैं। जितना दीन ज़िंदगी में खुलता है, जितना दीन की पुकार कान पर पड़ना शुरू हो जाती है, इंसान इंटेलेक्चुअली दीन से जुड़ने लग जाता है। और जो इंसान इंटेलेक्चुअली दीन से जुड़ता है उसी के अंदर इमोशनल अटैचमेंट दीन के लिए आती है। तो अब स्कॉलर कहते हैं अन्नल मकसूद असमा उ तदब्बुर व तफक्कुर। अल्लाह क्या चाह रहा है दुनिया में इंसान क्या सुने, सोच समझ कर सुने, तदब्बुर के साथ सुने, पॉन्डर करता हुआ सुने, वक्त लगा कर सुने। तो इसके अंदर एक इंसेंटिव ये है कि अगर लोग दीन से इस वक्त दूर हैं तो उनको दीन के करीब लाने का तरीका ये है कि उनको दीन सुनाया जाए। दीन पढ़ाया नहीं जाता उस तरह से कि किताब दे दी, आप पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी। अब तो वैसे ही रीडर बहुत कम हो गए हैं, पढ़ने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं। तो यहाँ से एक एंगल ये मिल रहा है, मैक्सिमम लोगों को कुरान सुनाने की तरफ लेकर आइए, उनको क्लासेस में अपने साथ लेकर जाइए, उनको व्हाट्सएप पर कुछ सुनाइए, जो आप उनसे बात कर सकते हैं बैठ के आप उनसे बात कीजिए, ताकि उनके अंदर मोटिवेशन डेवलप होना शुरू हो। और अपने बच्चों के लिए भी इसी फिलॉसफी को जहन में रखें। ये अमल जहन्नुम वालों का क्यों हुआ कि उन्होंने कहा कि हम सुनते नहीं थे, काश कि हमने सुना होता और अक़ल से काम किया होता। क्या सब बहरे थे दुनिया में? हाँ, डेफ थे सारे, दुनिया में सुनाई नहीं देता था। नाउ गो बैक ऑन आयात। जब भी कोई शैतान, नाफरमान शैतान, शैतान नाफरमान नहीं होते, नाफरमान जिन, जब भी कोई जिन आसमानों में रिस्ट्रिक्टेड जगहों पर जाने की कोशिश करता है तो अल्लाह क्या करता है? अल्लाह उनको रजम करता है फरिश्तों के ज़रिए, उनको जो है वो स्टार्स के ज़रिए वहाँ से, आग के ज़रिए वहाँ से दूर किया जाता है। जब ये जिन्नात, जब ये शैतान, जब ये नाफरमान जिन आसमान से रजम किए जाते हैं तो इनका सारा गुस्सा और जेलेसी है किसके लिए? असल में इंसानों के लिए। वहाँ से रजम होते हैं तो ज़मीन पर आकर अपनी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, और ज़मीन पर जब आकर अपनी एक्टिविटी करते हैं तो अल्लाह के बंदों के साथ जिस चीज़ को ये सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं वो ये है कि ये अल्लाह के बंदों को कुरान सुनने से दूर करते हैं। सबसे पहली चीज़ कुरान है ही ऑडियो एक्सपीरियंस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को आकर कुरान सुनाया, लिखा हुआ उनके हाथ में नहीं पकड़ाया, इट वॉज़ कम्प्लीटली एन ऑडियो एक्सपीरियंस। सहाबा सुनते थे, फिर एक दूसरे को पढ़ाते थे, फिर आगे फिल्टर डाउन करते थे। कुरान का मिजाज सुनने वाला है। ये सारी बातें अगर आपको लिखी हुई मिलेंगी कभी आपको पढ़कर वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो सुनकर इम्पैक्ट आ रहा है। कुरान एंड इस्लाम इज़ कम्प्लीटली एन ऑडियो एक्सपीरियंस। तो ये शैतान क्या करते हैं, ये सबसे पहले अल्लाह के बंदों को इस सुनने की एक्टिविटी से दूर करते हैं ताकि बंदा जो है वो आगे सोच ना सके। तो ये इंसानों को फिर क्या करते हैं, जब ये दूर करते हैं कुरान सुनने से, तो कैसे दूर करते हैं? आपके कानों में आके अपनी उंगलियाँ डाल देते हैं, हाँ, क्या करते हैं? ऑल्टरनेट लिसनिंग, ऑल्टरनेट लिसनिंग। ये कुरान नहीं सुनने देते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुरान खोलेंगे फिर कुरान बंद हो जाएगा, आप कुरान खोलेंगे फिर कुरान बंद हो जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है आप अपना मोबाइल में प्ले करेंगी कुरान की तिलावत और फिर ऑफ हो जाएगी, आप प्ले करेंगी स्टॉप हो जाएगी। ये तो हमारी फेवरेट हॉबी है, हाँ जिन ऐसे ही आता है, जिन जिन के बारे में और बताइए, ऐसी बात नहीं है। ना वो आपका ऑटो प्ले बंद करेगा, ना वो आपका मुसहफ बंद करेगा। ही विल गिव यू ऑल्टरनेट लिसनिंग, वो आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया में इन्वॉल्व करेगा। आज की कौम को, आज की उम्मत को और हमेशा से इंसानियत को कुरान सुनने से दूर करने के लिए शैतानों ने जिस एक्टिविटी को इस्तेमाल किया है वो है एंटरटेनमेंट की दुनिया। इनके कानों में वो डालो जिसके बाद इनको कुरान सुनना फ़ायदा ना दे। इनको इतना एडिक्टिव कर दो म्यूज़िक के साथ, सॉन्ग्स के साथ, कि उसके बाद उनको लगे दिस इज़ पार्ट ऑफ मी। बहुत लोग ये सवाल करते हैं ना, म्यूज़िक हलाल है या हराम है, हम सबको अभी तक कन्फ्यूजन ही है, बिल्कुल जैसे बर्थडेज़ में हमें कन्फ्यूजन ही है। देर इज़ नो कन्फ्यूजन, ये शैतानी आमाल हैं, कम्प्लीटली शैतानी आमाल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ाफिर से अपने आप को दूर किया, आपके सहाबा ने तमाम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से अपने आप को दूर किया। देर इज़ जस्ट वन एक्सेप्शन, दफ़ की है, वन साइडेड दफ़, नॉट दैट ढोल जो हमारी शादियों में इस्तेमाल होता है, द टू साइडेड वन, वन साइडेड दफ़, उसकी सिर्फ इजाज़त है, वो भी लिमिटेशंस के साथ इजाज़त है, बैरियर्स के साथ इजाज़त है, सर्टेन इन्वायरमेंट्स में इजाज़त है। पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री बंद हो जाए अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को देखा जाए। शैतान कानों में वो म्यूज़िक डाल देता है जिसके बाद कुरान सुनने का दिल नहीं करता, वो इतना बिज़ी कर देता है आँखों को और कानों को कि इंसान कुरान सुनने के लिए अपने आप को फारिग ही नहीं समझता, वो इतना ज़्यादा इन चीज़ों में, इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करता है। एंड दीज आर म्यूज़िक, आई कैन से ऑन डंके की चोट पर 100% 200% श्योरिटी, दिस इज़ अ माइंडलेस एक्टिविटी। अगर मैं आप लोगों को चैलेंज कर रही हूँ, जाएं जाकर जितने भी बच्चे म्यूज़िक सुन रहे हैं आज के, उनके लिरिक्स निकालिए और पढ़ना शुरू कीजिए ज़रा, यू विल कम टू नो कि कितने इडियट और कितने एबनॉक्शियस वर्डिंग्स हैं मेजॉरिटी गानों के, मेजॉरिटी गानों के। दे आर इन मैनी मैनी फॉरनर, जितने भी आपके बाहर के जितने भी सिंगर्स हैं, अब इनके जो लिरिक्स बन रहे हैं वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं टू लिव अ डार्कर लाइफ, टू स्टे अ डिप्रेस्ड लाइफ, टू स्टे इन योर डिप्रेस लाइफ एंड टू गो एंड एनकरेज देम फॉर द सुसाइड। जाएं निकालें लिरिक्स और पढ़ें, जिनको बगैर सोचे समझे हमारे बच्चे पढ़ते और सुनते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की माएँ अनपढ़ नहीं हैं, आज की माएँ जो हैं वो ऐसी ऑब्सोलीट माएँ नहीं हैं कि जिनको पता ना चले। और क्या आपके कानों में जा रहा है, अभी हमने कहा जो आप सुनते हैं वो आपकी अक्ल पर इम्पैक्ट करता है, तो इतना शैतानी एक्टिविटी ने आपको इस म्यूज़िक इंडस्ट्री से एंट्रैप किया हुआ है कि अब इसके बाद कुरान सुनना अच्छा नहीं लगता। सारा दिन गाड़ी में म्यूज़िक चलता रहे, पूरा ख़ानदान खुश रहता है, इधर अम्मा ने जाकर अपना कोई लेक्चर लगाया, सबकी पेट के अंदर से चीख निकलती है, हालांकि साउंड बॉक्स पेट में नहीं होता है बट वो पेट के अंदर से चीख निकलती है, बंद करें हमने नहीं सुनना, हर वक्त लेक्चर स्टार्ट। ये क्या है, शैतान के साथ ही, शैतान ने इतना ओवर पावर कर लिया कि अब कुरान सुनने का दिल नहीं करता, कुरान सुनने का दिल नहीं करता। बाज़ लोग कहते हैं ना आई एम एडिक्टेड टू म्यूज़िक, आप कभी इंटरव्यू सुने खुद सिंगर्स के, वो खुद कहते हैं वी आर एडिक्टेड टू म्यूज़िक बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू थिंक। आप इनके जुमले सुने और आप कुरान पढ़ें, आप कहते हैं सुभान अल्लाह, एक एक जुमला इस कलाम का बरहक है, सच्चा है। लोग कहते हैं मैं म्यूज़िक छोड़ नहीं सकती, छोड़ती हूँ तो डिप्रेस हो जाती हूँ, कहते हैं ना लोग, क्यों डिप्रेस होती हैं, कभी सोचा इस बात पर क्यों हम बिल्कुल शीप लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, जो सब कहते हैं वही सब हम करते हैं, जो सब करते हैं वो हम करते हैं, जो सब पहनते हैं वो हम पहनते हैं, जो सबका लाइफस्टाइल वो हमारा लाइफस्टाइल, जो सबकी चॉइसेस वो हमारी चॉइसेस। ये क्यों लोग कहते हैं कि मैं म्यूज़िक सुनना छोड़ती हूँ तो मैं डिप्रेस हो जाती हूँ, कभी किसी ने नहीं सोचा, कभी किसी के जहन में सवाल नहीं आया? जब से मुसलमानों ने सोचना छोड़ दिया तब से मुसलमानों का जवाल शुरू हो गया, हालांकि अल्लाह ने मुसलमानों को कुरान में कई जगह पर दावत दी है, अफला ततफक्करून लअल्लकुम तअक्लून अम अला कुलूबिन अक्फालुहा, क्या तुम तदब्बुर नहीं करते कुरान पर, क्या तुम्हारे दिलों के ऊपर ताले पड़े हुए हैं, सोचो। ये कहना कि अगर मैं म्यूज़िक नहीं सुनती तो मैं डिप्रेस हो जाती हूँ, कभी पूछें किसी से क्यों डिप्रेस हो जाती हूँ, चलें अगर आपको लगता है कि आप म्यूज़िक सुनती हैं और अगर ना सुने तो आप उस दिन बुझी बुझी उदास उदास सी रहती हैं, ज़रा अपने आप से सवाल करें कि आप क्यों ऐसी उदास होते हैं। किसी से आप सवाल करें तो वो क्या कहेगा, 90% और आपको भी यही जवाब मिलेगा कि फिर मुझे अपनी ज़िंदगी में जितनी भी शॉर्टकमिंग्स हैं, जो महरूमियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो सब याद आने लग जाती हैं। ऐसा ही होता है ना, म्यूज़िक आपके लिए एक ड्रग है जो आपको हकीकत से दूर कर देता है, वो आपको ये भुला देता है कि आप अशरफुल मखलूक हैं, वो आपको ये भुला देता है कि आप इस दुनिया में सिर्फ इबादत के लिए आई हैं, वो आपको ये भुला देता है कि आपको अल्लाह की बंदी बनना है, वो आपको ये भुला देता है कि अगर ये सफरिंग्स हैं देन देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। ये सोचना कि मेरी ज़िंदगी में ये सफरिंग्स हैं, मेरी ज़िंदगी में क्या परेशानी है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या था और मैं कहाँ लग गई हूँ, ये सोच तो मुबारक है, दिस इज मुतबारिक, इसलिए कि जिसको ये सोच आएगी वही अगला सवाल उठाएगा, तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी को ठीक कैसे करूं, फिर मैं अपना माइंडसेट स्ट्रांग कैसे करूं, फिर मैं अपने विजन को तलाश कहां से करूं, फिर मैं क्या जानूं और क्या सुनूं कि मुझे सही बात समझ आनी शुरू हो जाए। शैतान ये नहीं चाहता, तो शैतान कहता है चलो दोबारा से लगाओ अपने आईफोन के आई प्लग्स अपने, और लग जाओ दोबारा से गाने सुनने में, ताकि तुम सुन ना सको कुरान की बात, और जब कुरान नहीं सुनोगे तो अकल सही रास्ते पर काम नहीं करेगी। फिर क्या जिन लोगों को म्यूज़िक में इन्वॉल्व करता है वो सिर्फ म्यूज़िक की हद तक रहते हैं या आगे भी बढ़ते हैं? आगे भी बढ़ते हैं, और हमारा माशरा उसकी तस्वीर बन गया है। आज से 10-15 साल पहले इतना कॉमन ड्रग एंड अल्कोहल हम सोच नहीं सकते थे। मैं 20 साल पहले इमेजिन नहीं कर सकती थी कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग ऐसे होगी, अल्कोहल इस तरह से सर्व होगी घरों के अंदर, पार्टीज़ के अंदर, कि पूरा टेबल सेट है, रेस्टोरेंट्स के अंदर। हमें नहीं पता चलता है अब जिन रेस्टोरेंट्स में हम जाकर खाना खाते हैं कहाँ कहाँ शराब सर्व होती है, जिन ग्लासेस के अंदर हम पीते हैं हमें क्या पता उस ग्लास में हमसे पहले किसको शराब सर्व की गई है, कुछ नहीं पता। एवरीथिंग इज़ ब्लेंडेड, फितना, अंदाज़ा ही नहीं है हमें। हमारे बच्चे जिन घरों में जा रहे हैं दोस्तों के नाम पर शराबें सर्व होते हैं, स्कूल पार्टीज़ होती हैं अल्कोहल सर्व होती है, गैदरिंग्स होती हैं टीनेजर्स की अल्कोहल सर्व होती है, और अल्कोहल सर्व करने के लिए भी ऐसे नहीं कुछ छुप छुप के सर्व हो रही है, प्रॉपर टेबल सेटिंग्स होते हैं, प्रॉपर ग्लासेस होते हैं, प्रॉपर बॉटल्स होती हैं, फुल फुल डेकोरम के साथ, फुल डेकोरेशन के साथ। एक ज़माना था कि जहाँ जहाँ डिफेंस के अंदर अल्कोहल की दुकानें खुली हुई थी, लोग डरते डरते थोड़ा थोड़ा शटर खोल के शराबें बेचा करते थे। मुझे यहाँ का नहीं पता, बट डिफेंस में इट्स वेरी कॉमन। अब तो वहीं खड़े होकर बाहर ही, शराब की दुकान के बाहर ही सब पी रहे हैं, जैसे कोई पेप्सी की बोतल पी रहे हैं, और किसी को डर नहीं लगता। एक टाइम पे बिकॉज हमारे घर के बहुत करीब थी, और बहुत शोर मचाने के बावजूद वो बंद नहीं हुई, बहरहाल किसी क्रिश्चियन ने खोली हुई लाइसेंस लेके, तो आप बंद नहीं करा सकते उसको। बट जो ख़रीदता है वो थोड़ी पूछते हैं आप मुसलमान हैं कि क्रिश्चियन हैं। एक वक्त में जब लोग वहाँ पीते थे तो ब्राउन पेपर के अंदर उनकी बोतल हमेशा होती थी, हमेशा हमने ऑब्जर्व किया। अब कोई ब्राउन पेपर नहीं है, किसी को डर नहीं लगता, वहीं खड़े होकर हमने एक हाथ में उनके नेस्ले की बोतल होती है, एक हाथ में शराब की बोतल होती है, वो उसमें मिक्स करते हैं और पीते हैं। ये हाल है। ड्रग किस स्कूल के अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं हो रही है? सारे सेक्युलर बड़े स्कूल्स, सब स्कूल्स मैनेजमेंट को मालूम है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप म्यूज़िक में आगे बढ़ेंगे ये दो चीज़ें साइमल्टेनियसली साथ आएंगी, अल्कोहल एंड ड्रग्स, और इसके साथ तीसरी चीज़ इंटरकनेक्टेड ज़िना। ये हाल हो रहा है इस वक्त शैतानी एक्टिविटीज़ का, और शैतान इस तरह से हमारी यूथ को तबाह कर रहा है कि अब जब आप म्यूज़िक सुनते थे तो आपने सिर्फ अपने आप को कुरान सुनने से दूर किया था, आप सुन नहीं रहे थे, जब एक दफ़ा आप ड्रग्स में आ गए, अल्कोहल में आ गए, अब आप सुन भी लेंगे कुरान, नो इम्पैक्ट, अब आप देख भी लेंगे अल्लाह की आयात, नो इम्पैक्ट। उम्रों पर उम्रे हो रहे हैं और ज़िंदगियों में लाइफस्टाइल में गुनाह ख़त्म नहीं हो रहे, इसलिए के साथ साथ ज़िंदगियों में बाकी 11 महीने शराब जो शामिल है, ड्रग्स जो शामिल है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस एक्टिविटी को मेंशन किया है, कुरान में आता है ज़य्यन लहुमु शैतान, शैतान ने उनके अमाल को उनके लिए डेकोरेट कर दिया है, इसीलिए फिर ये किस चीज़ का जहन्नुम का ईंधन बनेंगे, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, आयत नंबर 5 में आया था जहाँ था कि शैतानों को रजम किया जाता है, व अतदना लहुम अज़ाबस सईर आया था, और यहाँ आया है मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, दोनों के दोनों को, जिन्नात नाफरमान हो या इंसान नाफरमान हो, दोनों के दोनों को अल्लाह ताला जहन्नुम की आग में डाल देंगे। आगे फरमाया आयत नंबर 11, फअतारफू बिज़म्बिहिम फसुहक़ल लि अस्हाबिस सईर, तो वह अपने गुनाह को एक्नॉलेज करेंगे तो उनके लिए दूरी है जो कि आग में जाने वाले हैं। बिज़म्बिहिम आया है, ज़म्ब का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में आता है, इनिशियली ज़म्ब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था जानवर की दुम के लिए, टेल ऑफ एन एनिमल, फिर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल होने लग गया किसी एम्बैरेसिंग चीज़ के लिए, फिर इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया कुरान ने, और कुरान से पहले अरबिक लिटरेचर ने इसको इस्तेमाल किया गुनाह के लिए, इसलिए कि गुनाह सोर्स ऑफ एम्बैरेसमेंट होगा आखरत में इंसान के लिए। गुनाह के लिए और लफ्ज़ भी आते हैं, जैसे जनाहुन आता है, इथमुन आता है, दम आता है, ऐसा गुनाह जो आपको एम्बेरस कर दे, बहुत ज़्यादा आपको एम्बेरस करे, चाहे वो एम्बेरसमेंट आपको दुनिया में महसूस करनी पड़े या वो एम्बेरसमेंट आपको आखरत में महसूस करनी पड़े। तो कहा गया फा अतारफ़ू बि ज़म्बिहिम, ये अपने गुनाह का एतराफ़ करेंगे। हर जहन्नमी को जहन्नम के सामने खड़े होकर अपना दुनियावी पोटेंशियल समझ आ जाएगा, मैं तो केपेबल थी कि मैं जन्नत में चली जाती, मैं केपेबल थी मैं अल्लाह की रहमत के लिए एलिजिबल हो जाती। आप सोचें, आपकी उम्र है 24 साल, आप मैथमेटिक्स में पीएचडी कर रही हैं, सही, चलें 24 से ज़्यादा, पीएचडी कौन करेगा 24 साल में, ऐसा अफलातून, 26 साल, और 26 साल में आप पीएचडी कर रही हैं मैथमेटिक्स में, आपके बच्चे का पेपर है क्लास 3 का मैथ्स का, वो कहता है अम्मा मुझे सॉल्व करके दिखाएं, पीएचडी कर रही हैं आप मैथमेटिक्स में, आपके बच्चे का पेपर है ग्रेड 3 का मैथमेटिक्स का, और आप उसको सॉल्व करती हैं तो फेल हो जाती हैं। हंसी आएगी अपने ऊपर, आ रही है ना हंसी, जहन्नमी भी अपने ऊपर ऐसी ही तंजिया हंसी हंसेंगे। इसलिए कि फा अतारफ़ु बिज़म्बिहिम, एतराफ़ इस बात का कि हम तो एलिजिबल थे कि हम अपने आप को जहन्नम से दूर रखते, हमें ताकत मिली थी, सेहत मिली थी, अक्ल मिली थी, सेंसेस मिले थे, नेमतें मिली थी, लेकिन हाल यह है कि एम्बेरसमेंट का, कि अपने आप को फेल कर लिया उस जगह पर जहां पास हो सकते थे। तो जहन्नमी अपनी गलतियों को एडमिट करेंगे, जहन्नमी अपने पोटेंशियल्स को याद करेंगे। बास स्कॉलर्स लिखते हैं जहन्नुम के सामने हर अहले जहन्नुम के लिए उसके पोटेंशियल वाज़े होना शुरू हो जाएंगे जो अल्लाह ने उसको दुनिया में दिया था, कि मुझे अल्लाह ने कितनी नेमतें दी थी और मैंने कितना वक्त ज़ाया किया। फ़ा अतारफ़ू में जो फ़ा आया है इसको कहते हैं फ़ा उला। फ़ा उला क्यों आता है? फसीहतुन। फ़ा उला का मतलब क्या है? फ़ा अतारफ़ू अरबी ज़ुबान में इस फ़ा के लिए कहते हैं फ़ा फसीहा, जिससे डिराइव ये किया गया है माने अल्लाह ताला हर इंसान को उसके हर गुनाह के बाद तौबा की अपॉर्चुनिटी देते हैं। ये रहमान की मोहब्बत है, अल्लाह हर इंसान को उसके गुनाहों के बाद उसको तौबा की अपॉर्चुनिटी देते हैं। कभी कभी यह तौबा की अपॉर्चुनिटी किसी फिज़िकल तकलीफ़ की वजह से मिल जाती है। बाज़ औक़ात इतने आप देखते हैं बहुत से लोग किसी बीमारी आने के बाद से कितनी तौबा करना शुरू कर देते हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से रहमत होती है कि अल्लाह उनको मौत से पहले उस बीमारी के ज़रिए उनको गुनाहों से पाक कर रहा होता है। तो तौबा की अपॉर्चुनिटी हर एक को मिलती है, जो इसका फ़ायदा ना उठाए, सिर्फ इस आयत में उनका जिक्र है कि वो जहन्नुम के सामने खड़े होकर एतराफ़ करेंगे अपने गुनाह का। और ज़म्ब वाहिद आया है, इसकी जमा आती है ज़ुनूब, इससे क्या पता चल रहा है? मुफस्सिरून कहते हैं एक गुनाह था, एक गुनाह, और अगर आयात के कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए कुरान ना सुनने का गुनाह, दीन पर वक्त ना लगाने का गुनाह, एक गुनाह था, लेकिन एक गुनाह की वजह से पूरा लाइफस्टाइल इफ़ेक्ट हुआ, इतना इफ़ेक्ट हुआ कि शैतानी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए, इतना इन्वॉल्व हुए कि तौबा करने का मौका ना मिला, तौफीक ना मिली, इतना इन्वॉल्व हुए कि जहन्नुम के मुंह पर आकर खड़े हो गए, और अब एतराफ़ करेंगे, लेकिन अब एतराफ़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल जैसे फिरौन को अपनी मौत सामने देखकर, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सामने देखकर तौबा की तौफीक मिली थी। हदीस में आता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके इस जुमले पर, जिसको कुरान ने मेंशन किया है सूरह यूनुस में, उसके ऊपर कीचड़ उठाकर उसके मुंह पर मारी थी। सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 में आता है हत्ता इदा अदराकहुल गरक, जब फिरौन को पता चल गया कि अब तो मौत सामने है, गरक ही होना है, समुंदर मिल रहा है, क़ाला बोला आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनो इसराइल, मैं बनी इसराइल के इलाह पर ईमान ले आया, अल्लाह नहीं कह सका, ला इलाहा इल्लल्लज़ी, जिसने वॉलंटेरिली पूरी ज़िंदगी अल्लाह का कलमा बुलंद नहीं किया, अल्लाह के कलमे के तकाजे बुलंद नहीं किए, मौत के वक्त उसकी ज़ुबान पर अल्लाह का लफ्ज़ नहीं आ सकता। इसकी तौबा तो इस वक्त भी कबूल नहीं होनी थी, लेकिन उलमा कहते हैं इस मौके पर भी इसको अल्लाह बोलने की तौफीक नहीं मिले। और हर इंसान जो सारी ज़िंदगी अपने आप को अल्लाह का नाफरमान बनाए, हदीस में आता है चार मौके ऐसे हैं जिनके बाद इंसान की तौबा कबूल नहीं होगी। उसमें से एक है दज्जाल का वाज़े हो जाना, यानी दज्जाल जब अपनी पूरी फिज़िकल फॉर्म में सामने अपीयर हो जाएगा। दूसरा है नज़ूल ईसा, ईसा अलैहि सलाम जिस वक्त नाजिल कर दिया जाएंगे। तीसरा है तुलू उश्शम्सी मिन मगरिबिहा, जब सूरज अपने मगरिब से निकलेगा, मगरिब से राइज होगा। और चौथा है गरगराते रूह, जब मौत, जब रूह हलक तक पहुंच जाएगी। गरगराते रूह द लास्ट गार्गल ऑफ द ब्रीथ, जिसमें रूह आखिरी निकलती है, पैरों से निकलना शुरू होती है जान और नाक और मुंह से बाहर निकलती है। तो जब वो नाक और मुंह तक आती है और इस जगह से हलक से साउंड बॉक्स से क्रॉस करती है तो एक आपको गार्गलिंग साउंड आती है, गरगराते रूह। इस मौके पर अगर तौबा की जाए तो तौबा कबूल नहीं होती। तो बता दिया ऐसे तमाम लोगों के लिए अल्लाह ताला ने फसुह कल्ली असहाब सईर, अल्लाह ताला ने उनके लिए शदीद लानत ज़दा अजाब तैयार किया है। पहले आया था खासी अन के अंदर आपको बताया था धुतकारे हुए, दूर किए हुए नफ़रत के साथ। और सोहकन अरबी ज़ुबान में आता है वो जो कास्ट ऑफ किए हुए हैं, कर्स्ड किए हुए, ये उससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम डिग्री है। अल्लाह ताला उनको जहन्नम के अंदर तन्हा छोड़ देगा। इस मुकाम पर आकर इस पैसेज का जो पोर्शन है काफिर का वो ख़त्म होता है और फिर अगली आयत में मोमिन का जिक्र आएगा। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में से अपनी नाफरमानियों के तमाम अमाल को निकाल दे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और हमारी औलादों को ईमान की ताकत और ईमान का स्टेमिना अता फरमाए। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह हम कभी शैतानी एक्टिविटीज़ का हिस्सा ना बने। अल्लाह हमें म्यूज़िक से दूर कर दे। अल्लाह हमारी औलादों को और हमारी औलादों की औलादों को और तमाम औलादों को, तमाम इंसानों को हर तरह की ड्रग और अल्कोहल से दूर कर दे। अल्लाह जिसको आपने हराम किया है अल्लाह हमें उससे बचा ले। अल्लाह जिसने जिसको आपने मारूफ बनाया है अल्लाह उसको हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना दे। अल्लाह जो जो तालीमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं अल्लाह हमारे ज़िंदगी के अंदर उनको हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बना दे। अल्लाह हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदक़ा जारिया बनाइए। अल्लाह हमारा आसान हिसाब लीजिए। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरी कुल्लिहा व अजरना मिन खिज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।